जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 रामा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तुमे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय गौरनिताई 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 जय गौरनिताई जय जय प्रभुपाद 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 नितई गौर हरि बोल हरि बोल नितई गौर बोल प्रेमानंदे। जय ओम नितलीला प्रवेश विष्णुपाद परिवार जिकाचार्य अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम नित्यलीला प्रवीश विष्णुपाद परिवार चकाचार्य अष्टोत्तर शत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। जय श्री श्री गौर निताई की जय। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। जय श्री श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन महामहोत्सव की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। सब वेद भक्त वृंद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चाक्षुरमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोमीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुना वैष्णवाञ्च श्रीरूपां साग्रजातम् सहगणरघुनाथम्वितं तं सजीव अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधाकृष्णपाद सहगणललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तन एक पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो दिजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो।
हरे कृष्ण। तो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से इस राधा गिरधारी मंदिर में आज रविवार के प्रीति भोज उत्सव में उपस्थित हुए सभी भक्तों का आजीवन सदस्यों का धर्म प्रेमियों का स्वागत है अभिनंदन है। आज के इस रविवार प्रति भोज के साथ साथ आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव को भी संपन्न किया। गुंडीचा मंदिर मार्जन, वैसे तो यह उत्सव 20 तारीख को पड़ता है, लेकिन भक्तों का यह इच्छा था कि अगर 20 तारीख को हम यह उत्सव मनाएंगे तो कम लोगों को लाभ मिलेगा। 21 को रथ यात्रा है तो 20 और 21 हो सकता है कि दो दिन हम बंबई रहने वालों को छुट्टी ना मिले। तो आज रविवार भी है जिसके कारण बहुत भक्त लोग रविवार को मंदिर में आते हैं, तो छुट्टी के कारण ज्यादा भक्तों को इसका लाभ पहुंचेगा। इस उद्देश्य को लेकर मंदिर के मैनेजमेंट की तरफ से यह उत्सव आज मनाया गया। साधक भक्तों के लिए यह उत्सव बहुत महत्व रखता है, और विशेष करके जो गोड़िया वैष्णव हैं, अपने अनेक जन्मों के पुण्य के उद्घृत होने से और जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे जीव जो इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जुड़े, ऐसे सौभाग्यशाली जीवों के लिए यह उत्सव बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है, क्योंकि इस उत्सव को स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आचरण करके भक्तों को शिक्षा दिया, स्वयं उन्होंने मनाया। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं आचरण करके ही शिक्षा देने के लिए अवतरित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित हुए और भगवत गीता का ज्ञान दिए, भगवत गीता का ज्ञान जो जीव मात्र को परम गति प्रदान करने वाला है, कृष्ण प्रेम प्रदान करने में समर्थ है, लेकिन भगवत गीता का ज्ञान देने के बाद भी जब 5000 वर्ष बीत गए तो भगवान वैकुंठ में विचार करने लगे कि मैंने जो उपदेश दिया, ज्ञान दिया, लेकिन बहुत कम लोग इसको समझ पाए और बहुत कम लोगों ने इस पर आचरण किया, क्या कारण है? तो उसमें एक कारण उन्होंने निकाला कि जैसे कोई व्यक्ति बड़ा प्रवचन देता है, लेकिन वो स्वयं उसका आचरण नहीं करता तो उसका इतना प्रभाव, भगवान भी शायद ये सोचे कि मैंने ज्ञान तो दे दिया लेकिन आचरण करके नहीं बताया, इसलिए शायद लोगों को समझ में नहीं आया या लोगों ने इतना स्वीकार नहीं किया। तब प्रभु उसी भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में आचरण करके हमको सिखाने के लिए, कलयुग के जीवों को सिखाने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, एक भक्त के रूप में आए। इसलिए ज्यादातर लोग भारत में विशेषकर नहीं जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, ज्यादा लोगों को ये पता नहीं है। जो भगवान कलयुग में नहीं है उसका सब लोगों को पता है, लेकिन वास्तव में कलयुग के अवतार कौन है उसका पता ज्यादा लोगों को नहीं है। देखा जाता है कि विशेषकर कलयुग के लोग जो भगवान है उनको साधारण व्यक्ति समझ लेते हैं, और जो कोई साधारण व्यक्ति है उनको भगवान समझ लेते हैं, ऐसी दशा है। हालांकि ये भक्त के रूप में आए और छन्न अवतार हैं, भगवत स्वरूप उनका छन्न है, इसलिए भी कई लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो भक्त हैं और विशेषकर गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हैं, वे ठीक ठीक जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही नहीं राधा कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आचरण करके, स्वयं इस गुंडीचा मंदिर का मार्जन करके हम भक्तों को अति महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की है। तो रथ यात्रा के पूर्व होने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। अभी अनावसर का समय चल रहा है, चार तारीख को जब भगवान का अभिषेक हुआ और उसके बाद इतना अभिषेक किया और इतना जल से भगवान को नहलाया गया कि उनको सर्दी लग गया, बीमार हो गए। मायावादी मोहित हो जाते हैं या भक्त लोग मोहित हो जाते हैं कुछ कुछ भगवान की लीलाओं से। अभक्तों को मोहित करने, असुरों को मोहित करने के लिए और भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। हालांकि हम जानते हैं भगवान कोई बीमार नहीं हो सकते, भगवान क्या बीमार होते हैं, भगवान त्रिगुण तीन गुणों से परे हैं, लेकिन भगवान ऐसी लीला करते हैं। जैसे भगवान भगवत गीता के चौथे अध्याय में बताते हैं, अजो अपि स न व्यय आत्मा, अजो मैं अजन्मा हूं और न व्यय आत्मा अविनाशी हूं, मेरा व्यय भी, मेरा जन्म नहीं है, मेरा मृत्यु नहीं है। लेकिन ये भगवान जन्म भी लेते हैं और मृत्यु की भी लीला, प्रकट की भी लीला करते हैं। अभी हमारे कुंडल कृष्ण प्रभु बैठे हैं, पिछले रविवार को बता रहे थे कि लोग कहते हैं कि भगवान के अंगूठे में बाण लगा और भगवान मर गए। तो भक्तों और असुरों को, मायावादियों को मोहित करने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। तो भगवान का जन्म नहीं है लेकिन जन्म लेने की लीला करते हैं, और भगवान का मृत्यु भी नहीं है लेकिन भगवान ऐसी लीला करते हैं। इसी प्रकार भगवान बीमार नहीं होते लेकिन वो ऐसी लीला करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने भाष्य में लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में कि ये 15 दिन अनावसर के समय भगवान अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। इस प्रकार भगवान एक आदर्श पति का आचरण प्रस्तुत करते हैं कि अपनी पत्नी के साथ रहते हैं 15 दिन तक और लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं, एकांत में वास करते हैं, नो डिस्टर्ब, कोई डिस्टर्ब ना करे पति पत्नी साथ में। तो ये भगवान की एक आदर्श पति के रूप में की गई लीला, ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उल्लेख किया। लेकिन भगवान अपने भक्तों को दर्शन दिए बिना नहीं रह सकते। भक्त जब भगवान का दर्शन नहीं होता तो बहुत उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हम आज सुन रहे थे एक प्रवचन, तो उसमें कहते भारत में ये नियम था, आज भी है लेकिन आज थोड़ा कम होता जा रहा है, कि प्रातः काल उठकर लोग पहले भगवान मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाते थे। ये पहले से हमारा संस्कृति चला आ रहा है। अब हम प्रातः उठकर ये स्थान, भक्ति रसामृत महाराज बता रहे थे कि पहले ये स्थान था कि प्रातः उठकर लोग भगवान का दर्शन करने जाते थे मंदिर में। अब ये स्थान हमारे घर में टीवी ने ले लिया, प्रातः उठकर लोग टीवी चालू कर देते हैं, दूरदर्शन, भगवान के दर्शन से जो दूर रखता है वो दूरदर्शन ने ले लिया। आज भी कई लोग, कई भक्त हैं जो दर्शन करने जाते हैं, और कई अन्य पंथ और अन्य समाज में भी ये विधि हमने देखा, विशेषकर जो जैन समाज है उसमें हम देखते हैं प्रातः प्रातः उठकर सब बच्चे और वो और स्त्रियां और सब भगवान का दर्शन करने जाते हैं। तो ये संस्कृति हमारे समाज में था, लेकिन धीरे 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 ज्यादा हम ज्यादा चलते हैं तो मंदिर से बाहर पेप ऐसा हॉर्न बजा देते हैं, हो गया दर्शन। तो इस प्रकार हम जो ये सोचते हैं कि हमारा आधुनिक विकास कर रहे हैं, वास्तव में आधुनिक विकास नहीं है, हमारा रकास हो रहा है, ये विकास नहीं है। आधुनिक विकास से ये गुंडीचा मंदिर मार्जन में जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो इस पर पूरा अपना जो टीका लिखा है उसमें ये भी बात दिया है कि जो लोग ये समझते हैं कि आधुनिक विकास के द्वारा समाज की समस्याओं को हम दूर कर देंगे, तो ये होने वाला नहीं है। ये भी एक प्रकार का हृदय का मलिनता है, ये भी एक प्रकार का हृदय का अभद्र है। जो लोग ये विचार रखते हैं कि आधुनिक योजनाओं के द्वारा हम समाज को सुखी बना देंगे, ये भी एक प्रकार का हृदय का मलिनता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि कुछ भौतिक उन्नति करके हम सुखी हो जाएंगे, ये भी वास्तव में ये भी हृदय का धूल है। ये भी हृदय का एक कलुषितता है। वास्तव में समाज का कल्याण या व्यक्ति का दुख कृष्ण भक्ति के अलावा दुख दूर नहीं हो सकता, उसकी समस्याओं का हल नहीं हो सकता। रामायण में तो एक चौपाई है, मुझे याद नहीं, ये सिद्धांत वो है, हो सकता है कि कोई समुद्र को मंथन करके उसमें से घी निकाल ले, या कोई बालू को मथ कर उसमें से तेल निकाल ले, ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भगवान राम का भजन किए बिना सुखी हो जाएगा संसार सागर पार, ऐसा नहीं हो सकता। मानव समाज की समस्याएं हल नहीं हो सकती। तो इस प्रकार ये सब आज के इस प्रसंग में टीकाओं में हमारे आचार्यों ने लिखा है। तो गुंडीचा मंदिर मार्जन की थोड़ी लीला और उसके बाद उसके ऊपर हमारे आचार्यों की टीका पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। आइए चैतन्य चरितामृत से प्रसंग लेते हैं। तो जैसा हम बताया कि 15 दिन तक भगवान अपने भक्तों का दर्शन नहीं देते हैं, जिससे भक्त दुखी हो जाते हैं, तो पुनः अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान लक्ष्मी जी से अनुमति मांगते हैं कि मैं मेरे मौसी के घर जाना चाहता हूं। ये अनुमति लक्ष्मी जी से मांगते हैं और मैं तुरंत आ जाऊंगा, ऐसा वचन देते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि कल रथ में बैठकर भगवान हमारे स्वामी गुंडीचा मंदिर आएंगे, तो उसके पूर्व चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान गुंडीचा मंदिर में विराज आमंत्रित करके उनको उचित स्थान पर बिठाने के लिए यह गुंडीचा मंदिर मार्जन महोत्सव मनाए। और इसमें मुख्य शिक्षा यह रही कि अगर आप भगवान को आकर्षित करना चाहते हैं, भगवान को आमंत्रित करना चाहते हैं, अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं, विराजमान करना चाहते हैं, तो आपका सर्वप्रथम कर्तव्य है कि आप अपने हृदय को शुद्ध कीजिए, उसका मार्जन कीजिए। ऐसे अभी हम ब्रह्मचारियों से चर्चा कर रहे हैं, मैंने प्रश्न पूछा कि भगवान को हम हृदय में आमंत्रित करना चाहते हैं या बिठाना चाहते हैं, तो मैंने शास्त्र स्वरूप प्रभु से पूछा कि भगवान तो ऑलरेडी हमारे हृदय में है, फिर बिठाना कैसे है, और आमंत्रित करके बाहर से लाके बिठाना है क्या, तो क्या है इसका रीजन क्या है। तो बहुत मंथन हुआ लेकिन कोई ठीक से उत्तर मिला नहीं। फिर चर्चा करते करते एक निर्णय पर पहुंचे कि वास्तव में भगवान तो गीता में कहते हैं सर्वे च चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं तो सभी के हृदय में है, तो फिर कैसे बिठाना है आमंत्रित करके। वास्तव में भगवान हमारे हृदय में है ऑलरेडी पहले से, लेकिन भगवान को शांति पूर्वक वहां बिठाना है। भगवान हमारे हृदय में है लेकिन परेशान है हमारी गतिविधियों से। भगवान हमारे हृदय में है, हमने भगवान को अनुकूल नहीं बनाया है ना। भगवान हमारे हृदय में बैठे लेकिन उनको अनुकूल नहीं किया, हम उनके प्रतिकूल हैं अभी तक। तो शुद्ध चित करना मतलब भगवान को अनुकूल करना, तब भगवान वहां पर शांतिपूर्वक बैठ सकते हैं। जैसे जहां हम बैठते हैं वहां का ये मार्बल है बिल्कुल साफ हो, पानी से धोया हुआ हो कोई भी, और शीतल हो जाता है, तो वहां बैठकर हमारा मन भी शांत हो जाता है। तो इस प्रकार जब हमारा हृदय शुद्ध होता है तो वहां भगवान शांतिपूर्वक बैठते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान को शांतिपूर्वक बैठाना है। वैसे तो जीव के साथ में बैठे हुए ही है ना, लेकिन कैसे बैठे हुए हैं, 36 के आंकड़े में। कहते हैं दो व्यक्ति साथ में रहते हैं, लेकिन बोला इनका तो 36 का आंकड़ा है। 36 जो होता है दोनों साथ में ही होता है, 3 और 6, लेकिन आप देखेंगे तो 6 का मुंह उधर होता है और 3 का मुंह उधर होता है, ऐसा लिखे तो है? तो इस प्रकार बैठे हुए हैं 36 का आंकड़ा। 36 का आंकड़ा का मतलब उनके विरुद्ध। भगवान हमारे हृदय में क्यों बैठे हुए हैं, परमात्मा रूप में हमारे साथ हैं, बिल्कुल हर जन्म में साथ रहते हैं, सब छूट जाते हैं, लेकिन भगवान जीव के साथ रहे आते हैं। किसी भी योनि में जीव जाए परमात्मा रूप में वो साथ में रहते हैं। क्यों साथ में रहते हैं, एक भक्त ने बहुत सुंदर इसका उदाहरण दिया था कि जैसे प्रातः प्रातः रोड पर कुछ लोग कुत्ता लेकर घूमते हैं, सुबह में विशेषकर, तो कुत्ता रोड के एक साइड में मल त्याग करता है और वो जंजीर पकड़ के खड़ा रहता है, आदमी जो उसका स्वामी होता वो खड़ा रहता है। क्यों पकड़ के खड़ा रहता है कि कब ये सब मल त्याग कर दे फिर मैं इसको घर ले जाऊं, इसलिए वो पकड़ के खड़ा रहता है। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण हमारे हृदय में हैं, हमारे साथ, और वो साथ में है परमात्मा में, कब तक, जब वो चाहते हैं कि कब ये मल त्याग करे, कब अपना मंदिर मार्जन कर ले, अपना हृदय को, चित्त को शुद्ध कर ले, और जब इसका हृदय शुद्ध हो जाए तो मैं इसको ले जाऊं इसके घर, इस प्रकार वो वेट कर रहे हैं। इसका उदाहरण उपनिषद में ऐसे भी दिया जाता है कि एक वृक्ष पर दो पंछी बैठे हैं, एक पंछी जो है वो उस वृक्ष के फल को खाने में मस्त है, दूसरा जो पंछी है वो वेट कर रहा है कि कब ये फल खाने, ये संसार के भोग करने से विरक्त होकर मेरी तरफ देखे, कब मेरी तरफ, युद्ध का वेट कर रहा है। तो जीव जो है इस संसार के विषयों में, विषयों को भोगने में पड़ा हुआ है, और भगवान वेट कर रहे हैं साथ में, कब ये संसार के विषयों से शुद्ध हो जाए, इसकी ये हृदय की जो कलुषिता है ये दूर हो जाए और ये मेरे को अनुकूल कर ले, तब भगवान कहते हैं इसको भगवत धाम भेज दो, अपने घर भेज दो। तो इस प्रकार भगवान हमारे साथ रहे आते हैं, लेकिन 36 का आंकड़ा है जब तक हम उनके, उनको अनुकूल नहीं कर लेते। अनुकूल का अर्थ है भगवान ने जो हमको जीने के लिए शास्त्रों में आदेश दिया, उपदेश दिया, उनके अनुसार जीवन को व्यापन करना, उसके विरुद्ध हम चलते हैं तो ये 36 का आंकड़ा। आंकड़ा वही रहता है, आत्मा और परमात्मा वही रहते हैं, लेकिन जैसे 36 को 63 बना दिया जाता है, वही दोनों, लेकिन फिर दोनों का मुख सामने सामने हो जाता है, भगवान की तरफ हम देख लेते हैं, उनकी सेवा में लग जाते हैं। तो इस प्रकार चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करके ये संभव होता है। तो यह शिक्षा चैतन्य महाप्रभु इस उत्सव के द्वारा देते हैं, इस लीला का संपन्न करके, स्वयं आचरण करके प्रभु हमको सिखाते हैं। तो जब भगवान जगन्नाथ जी गुंडीचा जाने वाले थे मंदिर, उसके पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ मंदिर के जो मैनेजमेंट करते हैं काशी मिश्र, और विशेष मैनेजमेंट करने वाले जो हैं पांडिचा और सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि भक्तों को बुलाकर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि कल जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर जाएंगे तो हम उसके पूर्व ही उस मंदिर का मार्जन करना चाहते हैं, अगर आप आदेश दें तो। तब काशी मिश्र ने कहा कि प्रभु आप इच्छा कीजिए, जो भी करना है हम लोग करेंगे, हम आपके सेवक हैं, और विशेषकर महाराज प्रताप रुद्र की यह आज्ञा है कि चैतन्य महाप्रभु की जो भी इच्छा हो तुरंत पूरी की जाए, उनका जो भी आदेश इच्छा हो पूरा किया जाए, इसलिए आप हमें आज्ञा कीजिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, मैं स्वयं अपने भक्तों के साथ ये गुंडीचा मंदिर का मार्जन करना चाहता हूं। तब इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इसके लिए जो भी अनुकूल सामग्री हो, झाड़ू मटका इत्यादि आप व्यवस्था कीजिए और हम सभी भक्त मिलकर गुंडीचा मंदिर का मार्जन करेंगे। तो काशी मिश्र ने और पांडिचा ने सबने मिलकर तुरंत चैतन्य महाप्रभु की इस आदेश का पालन किया और शत घट जले हेल मंदिर मार्जन, मंदिर को धोने के लिए 100 घड़े मंगाए और 100 झाड़ू मंगाए, और ये सारी व्यवस्था मंदिर के व्यवस्थापकों ने किया। चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत अपने सभी भक्तों को आदेश दिया, सबको बुलाया और सुबह सुबह सबके माथे पर भगवान ने चंदन का लेप किया, पुष्पमालाएं पहनाई और सबको इस गुंडीचा मंदिर मार्जन के लिए आदेश दिया, लेकिन अग्रसर चैतन्य महाप्रभु रहे। इस प्रकार आदे सभी भक्त सर्वप्रथम जाकर मंदिर में झाड़ू लगाया। झाड़ू लगा के बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा मंदिर है, उसका चैतन्य चरितामृत में कितना फुट लंबा है, कितना चौड़ा है, क्या कितने उसके भवन है, क्या क्या रूम है, सब विस्तार से दिया गया है। तो पहले सर्वप्रथम झाड़ू लगाया, झाड़ू लगा के सारा कचरा इकट्ठा किया। तो झाड़ू लगाने में भी सब भक्त लोग झाड़ू लगा रहे थे, झाड़ू लगाकर एक जगह पर अपना अपना कचरा एकत्रित कर रहे थे। जब मंदिर के बाद सारा बाहर कचरा इकट्ठा किया तो जितना सब भक्तों ने मिलकर कचरा का जो इकट्ठा किया था उतना से ज्यादा चैतन्य महाप्रभु ने कचरा निकाल के इकट्ठा किया। तो चैतन्य महाप्रभु का कितना आग्रह था, कितना प्रेम था इसके प्रति, कितना आग्रह है कि किस प्रकार व्यक्ति को भगवान की सेवा में इस प्रकार आदर्श दिखाना चाहिए। भगवान की सेवा में जो लीडर हैं विशेषकर, या जो आचार्य पद पर स्थित हैं, वो आचरण करके दिखाएं, आचरण करके दिखाना चाहिए, तब शिक्षा लोगों को मिलती है। आजकल प्रवचन हम लोग बहुत बड़ा बड़ा करते हैं, विशेषकर हमारे जैसे लोग, लेकिन जीवन में आचरण नहीं होता तब तक ये शिक्षा बिल्कुल खोखली रह जाती है। इसलिए जब हम दूसरों को बताएं, आजकल कहीं भी आप जाइए पहले व्यक्ति आपको शिक्षा देना चाहता है, कुछ भी आप बात कीजिए वो आपको गुरु, वो स्वयं गुरु बन जाएगा, उसको सब मालूम है ये है। लेकिन जब तक हमारे जीवन में उसका आचरण नहीं होता तब तक हमारे उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं। तो आचरण करके दिखाना चाहिए, और विशेषकर जो सीनियर लोग हैं या आचार्य या लीडर हैं उनको आचरण करके दिखाना चाहिए कि किस प्रकार भगवान की सेवा की जाती है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार अपने भक्तों के साथ पहले झाड़ू से सारा कचरा बाहर निकाला और उसके बाद आदेश दिया मटका भर के पानी जल लाओ। सब जल भर के तैयार थे, कोई बावड़ी से ला रहा था, कोई सरोवर से ला रहा था, नरेंद्र सरोवर बाद पास में ही था, और इस प्रकार सब मटके भर भर के तैयार थे। चैतन्य महाप्रभु के आदेश का इंतजार कर रहे थे बस, और जैसे ही आदेश मिला सब फटाफट फटाफट जल भर भर के लाने लगे। हरि बोल ले, लो लो नहीं, हरि बोल हरि बोल, वो उसको मटका देता, वो आगे देता था। इस प्रकार सब हरि बोल करके, हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा, और कोई शब्द नहीं, हरे कृष्णा और हरि बोल, इसके सिवा और कोई कुछ नहीं बोल रहा था। इस प्रकार भगवान का कीर्तन करते करते इस प्रकार गुंडीचा मंदिर का मार्जन हो रहा था। जल को छत के ऊपर छांटा जा रहा था, सबसे जैसे नीचे गिरता था तो फर्श और दीवार और सब साफ हो जाता था। इस प्रकार सैकड़ों घड़ों से जल भर भर लाकर मंदिर का बहुत ही अच्छी तरह से मार्जन धुलाई किया, सफाई किया। कई मटके बीच में फूट जाते थे तो नए लाते थे, और भक्त बहुत ही सेवा की आवेश में थे, बहुत सेवा का उत्साह था, इतना उत्साह था कि सामने सामने टकरा जाते थे कभी कभी तो मटका फूट जाता था, लेकिन इतना उत्साह, उत्साह निचात धैर्य। वास्तव में भगवान की सेवा या भक्ति में उत्साह होना बहुत जरूरी है, उत्साह के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। कभी कभी भक्त को कहते हैं ये कार्य पहले से ये चेहरा ऐसा हो जाता है कि आफत आ गया जैसे। कोई भी कार्य उत्साह से करना चाहिए भक्ति में है। तो इस प्रकार उत्साह पूर्वक सभी भक्त यह सेवा कर रहे थे। जब मंदिर का जल से भी सफाई हो गया, और उसके बाद जब जल से सफाई हो गया तो बिल्कुल मार्बल जो था बिल्कुल शीतल हो गया, और जब शीतल मार्बल हो गया तो सभी भक्त जब उसको देखा और उस पर बैठे तो उनका मन भी निर्मल हो गया। इस प्रकार जब हमारा हृदय जो है वो शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, अन्य अन्य विषयों से उदासीन हो जाता है, इस प्रकार जब जब हमारा चित्त भौतिक विषयों के प्रति उदासीन हो जाता है तो उसको कहते हैं शीतल, शांत हो गया। मन अशांत के संसार के विषयों को जो भोगने की कामना रहती है तो मन हमेशा अशांत रहता, भागता है, ये ऐसा करूं वो वैसा करूं, एक और उधर ये करूं वो करूं, इस प्रकार मन भागता रहता है तो मन अशांत रहता है। लेकिन जब इसे विषयों से उदासीन हो जाता है तब मन शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है, निर्मल और शीतल। जब निर्मल होता है तो शीतल होता है। निर्मल का अर्थ है मल, भगवान की कृष्ण भक्ति के अनुकूल जो विषय हैं ये मन को शीतलता प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इसके जो प्रतिकूल विषय हैं वे वास्तव में उनको मल कहा गया है। भगवत सेवा या भगवत भक्ति के प्रतिकूल विषय वो सब जीव के लिए मल जैसे हैं। इस प्रकार सबके मन निर्मल हो गए और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने सबको बिठा दिया, सब शांति से बैठे और बैठने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अब और कहीं कूड़ा कचरा घास कंकर जो रह गया उसको हाथ से बीन बीन कर साफ करना, मतलब ये दूसरी बार और मार्जन हो रहा है। इस प्रकार इसका इस पर बहुत बड़ा टीका भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, जिसको प्रभुपाद जी ने कोट किया है कि दूसरी बार मंदिर जो साफ किया मतलब चित्रूपी दर्पण का बिल्कुल मार्जन करना है। पहले पहले होता है कि जब हम भक्ति में आते हैं तो कुछ हमारे अनर्थ होते हैं जो छूट जाते हैं, जैसे भक्ति में आने वाले भक्तों का हम देखते हैं हमारे जो भक्ति में आने के पूर्व जो कुछ अनर्थ थे, कुछ गलत आदतें थी वो छूट जाती हैं। हमने नशा छोड़ दिया, हमने अवैध भक्षण छोड़ दिया, जुगाड़ छोड़ दिया, अवैध स्त्री संबंध छोड़ दिया, ये वस्तुएं छूट जाती हैं, ये छूट गए। लेकिन फिर भक्ति में आने के बाद जो कुछ अनर्थ हैं या भक्ति में आने के बाद भी अनर्थ कहीं हृदय में कोने कंकर और तिनके की तरह कोने में पड़े रहते हैं, या भक्ति में आने के बाद जो अनर्थों का उदय होता है उनको दूर करना बड़ा कठिन होता है, बहुत बड़ा मुश्किल है। इसके लिए इसी को कहते चेतो दर्पण चित रूपी दर्पण का मार्जन कोट किया है, चेतो दर्पण मार्जनम, जो शिक्षा अष्टक में चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी कि चित रूपी दर्पण का मार्जन करना चाहिए। ये चित्त, बहुत से भक्त कभी कभी प्रश्न करते हैं चित्त क्या है, पहले पहले शुरू शुरू में हमको भी इस पर बहुत संशय रहता है ये चित्त क्या है, चेतो दर्पण मार्जन मतलब चित्त। और इस बार जो वृंदावन से प्रभु जी आए थे उन्होंने सेमिनार लिया था, उसमें भी चित्त के बारे में बहुत व्याख्या किया। तो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में जो भगवान कपिल देव की शिक्षा है उनके अनुसार प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, उसमें जो 24 तत्व बताए गए हैं प्रकृति के, 24 तत्व हैं, 5 स्थूल तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, फिर 5 सूक्ष्म तत्व, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये सब मिलके 20 हो गए हैं, 20 हुआ ना। पृथ्वी जल अग्नि इसको स्थूल तत्व कहते हैं, और सूक्ष्म तत्व मतलब इंद्रियों के विषय, रूप रंग, रूप स्वाद स्पर्श शब्द, ये जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, 10 और 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रियां, ये 20 हुए। और प्राय कहा जाता है कि मन बुद्धि अहंकार ये 23 हुए, लेकिन वहां कपिल देव बताते मन बुद्धि अहंकार और चेतना, और प्रभुपाद जी लिखते हैं कलुषित चेतना उसको लगा। और वहां प्रभुपाद जी टीका में लिखे कि कलुषित चेतना मतलब इस चेतना जो है इसके पीछे आत्मा रहता है, आत्मा का ही, आत्मा से ही ये चेतना है, है? जैसे सूर्य होता है सूर्य और प्रकाश है? तो प्रकाश के पीछे सूर्य है, लेकिन सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है, इसी प्रकार आत्मा पीछे है और आगे चेतना है, ये चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है ना। चेतना जैसे हमारे अंगुली के किसी भी छोटे अंग के भाग में भी कोई अगर सुई घुमाए तो तुरंत पता चलता है, इसका कारण क्या है? चेतना। और चेतना किसके कारण है? आत्मा के कारण। तो ये चेतना, वैसे तो जो आत्मा है वो शुद्ध रहता है, चेतना चित जो है शुद्ध होता है, आत्मा की अवस्था शुद्ध है, लेकिन यह चेतना चित, अरे जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, गौर निताई की। ये चेतना हम जब भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आते हैं, भगवान की माया के संसर्ग में आते हैं, तब ये हमारी जो चेतना है कलुषित होती है। जैसे उदाहरण दिया गया है उसमें कि बादलों से गिरने वाला जल जो है पृथ्वी पर गिरने के पहले बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ रहता है, लेकिन जब वह पृथ्वी पर गिरता है, पृथ्वी से मिलता है, तो गंदा हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा शुद्ध रहता है, लेकिन आत्मा जब माया के संसर्ग में, भौतिक माया के संसर्ग में आता है, कई भक्तों का प्रश्न होता है माया के संसर्ग में क्यों आता है, ये उस प्रसंग में बहुत क्लियर किया गया है कि जीव वास्तव में अणु है, जीव अणु है, भगवान विभु है। तो जीव अणु होने है एक कारण, और दूसरा कारण कि उस जीव को भगवान के द्वारा कंचित मात्र स्वाधीनता प्रदान की गई है, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट जिसको कहते हैं, वो स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उस स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का दुरुपयोग करने के कारण जीव माया के संसर्ग में आता है। जो हमारे पास स्वतंत्रता है उसका, और ये प्रभुपाद जी वहां बहुत तात्पर्य में बड़ा लिखते हैं कि भक्ति में आने के बाद तक यह स्थिति हमारी बनी रहती है, इसलिए भक्ति में आने के बाद भी भक्त को हमेशा सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। हैं, ये जो हमारे पास स्वतंत्रता रहती है इसका दुरुपयोग भक्ति में आने के बाद भी हमारी कभी कभी इच्छा हो जाती है, चलो लाल कपड़ा पहने अब शादी कर लो, है जो हो जाता है भक्ति में आने के बाद भी, कि देखा जाता है भक्त लोग गड़बड़ कर देते हैं कभी कभी, है होता है ना गड़बड़। तो भक्ति में आने के बाद भी अगर भक्त सावधानी ना रखे तो भक्ति में आने के बाद भी ये स्थिति, कभी पूछते हैं कैसे हो गया, अरे जानने के बाद भी तो हम लोग कर लेते हैं। जब जान लिया कि हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण की सेवा करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, सब बाकी माया जाल है, हम भवा अमृत में गिर गए हैं, ऐसा है वैसा है, सब जान लेते हैं, उसके बाद भी हो जाता है। रात को हमारा काउंसिल चल रहा था तो हमारे काउंसलर हैं बाल गोविंद प्रभु, यहाँ आते हैं, एक बहुत सुंदर बात कहा, उनको बोलना था ये चैतन्य शिक्षा अष्टकम पर, भवा अमृतो पर वो बोल रहे थे, तो भवा अमृतो पर बोले भाव सागर में गिर गया, तो भागवतम का कोटेशन दे रहे थे कि जीव जब गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में बहुत कष्टमय स्थिति में होता है, बहुत कष्टमय स्थिति में होता है। हमने वहां समझाया कि अगर कोई इस कष्ट को समझना चाहता है कि हम गर्भ में कितना कष्ट स्थिति में थे, तो आप अपने आप को एक थैली में, चमड़े का थैली मंगा कर और उसमें थोड़ा मलमूत्र डालकर उस थैली में मुंह बंद करके आपको इधर लटका दिया जाए 8-9 घंटा, खाली 2-4 घंटा, पहले तो आप तैयार ही नहीं होंगे, लेकिन लटका दिया जाए तो उसमें लटकने के बाद आप विचार करो कि वहां हम कितने दुखी होंगे, ये तो फिर भी ठीक है स्थिति, आजू बाजू में तो खुला है, तो बहुत कष्टमय स्थिति में होता है, और वो अनुभव भी करता है कि बहुत कष्ट में हूं, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि ए प्रभु मुझको इस दुख से निकालिए, अब मैं आपका भजन करूंगा और मुक्त हो जाऊंगा। तो वो बता रहे थे बाल गोविंद प्रभु कि जीव जब ऐसा प्रार्थना करता है तो भगवान हंसते हैं उसकी प्रार्थना पर। तो हंसते क्यों है? बहुत सुंदर बात बताया, अरे मूर्ख ऐसी प्रार्थना तू कितनी बार कर चुका है, ऐसा तो बहुत प्रार्थना तू किया है, 84 लाख योनियों में घुमा है और यही प्रार्थना करता रहता है और बाहर निकलता है तो, एक बार राधा गोविंद महाराज बताते कि प्रार्थना अंदर करता है और बाहर निकलता है तो बोला बीड़ी, बीड़ी चाहिए, चाय चाहिए, टीवी चाहिए, और वो अंदर प्रार्थना किया, वो तो भूल गया। हम भूल गए ना, सब लोग प्रार्थना तो किए हैं, कोई भागवत थोड़ा झूठ बोल रहा है। भागवतम झूठ नहीं बोलता है, परम सत्य अगर इस जगत में कोई है तो वो भागवतम है, तो वो तो झूठ नहीं बोल रहा है, तो सत्य बोल रहा है कि वो प्रार्थना करता है। तो ये तो प्रार्थना तो सब करके ही आए हैं, तो अब क्या हुआ वो प्रार्थना का? अब तो बोलो तो नहीं 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 आज तो हम नहीं आ सकते, किसी को कहते नहीं नहीं टाइम नहीं मिल सकता, तो चलो घर पे माला करो, घर पे भी नहीं होता, कैसे करें, ऐसा है वैसा है उस 10 लंबा लिस्ट निकाल देते हैं, कहाँ टाइम मिलता है, कहाँ ऐसा होता है, कैसे करें। हाँ आप लोगों ने बहुत धन कमा के रख लिया इसलिए आप लोग करते हैं। अरे भाई हमने कमा के नहीं रखा है, हम कमा रहे हैं धन। तो इस प्रकार की कई प्रकार की बातें करता है, तो भगवान हंसते हैं, ये ऐसा तो बहुत बार कह चुका है तू, ठीक है भाई एक बार और चांस देता हूं जा। तो कहने का अर्थ है जीव का ये स्थिति जानने के बाद भी वो तटस्था वो गिर सकता है। प्रभुपाद जी ने वहां तात्पर्य में लिखा है कि वैदिक शास्त्र कहता है कि भक्ति तलवार की धार पर चलने जैसा है, हैं? हमारे मीराबाई ने भी गाया है भक्ति खोड़ाने वाली धार, भक्ति ये खोड़ तलवार की धार पर चलने जैसा है। तो प्रभुपाद जी ने भी ये कोटेशन लिखा कि भक्ति शास्त्रों में कहा गया है कि तेज धार पर चलने जैसा है। तो वहां प्रभुपाद जी ऐसा उदाहरण देते हैं कि जैसे हम सेविंग करते हैं तो ब्लेड तेज धार वाला हो तो अच्छा सेविंग होता है, लेकिन अगर सावधानी न बरती जाए तो वो काट भी सकती है, कट भी सकते हैं। तो इस प्रकार भक्ति जो है ये चित्रूपी दर्पण का मार्जन करने का लिया है, और भगवत प्रेम को वापिस उदय करने के लिए भक्ति जो है वो प्रमुख साधन है, बहुत तेज साधन है। लेकिन उसमें भी अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे, सतर्कता नहीं रखेंगे, तो फिर से माया में जा सकते हैं। तो कहने का अर्थ है चेतो दर्पण मार्जन पे मैं बोल रहा था विषय हट गया। तो ये चित है ये माया के संसर्ग में आके कलुषित हो जाता है, कलुषित चेतना। और जब हमारी ये चेतना कलुषित होती है तब उससे अहंकार का जन्म होता है, हैं? क्या जन्म होता है? अहंकार। और फिर अहंकार से सब हैं? ये इंद्रियां और विषय और सब संसार ये अहंकार से सब प्रकट होता है। तो अहंकार, अहंकार को भी शुद्ध करना होता है। जैसे एक प्रसंग में हम सुन रहे थे माता यशोदा कृष्ण कृष्ण का जो तृणावत लेकर गया तब के कब कृष्ण की वो करते हैं उनका रक्षा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी है? तो उस प्रार्थना में माता यशोदा एक शब्द कहती है तुम्हारे अहंकार की रक्षा भगवान पुरुषोत्तम का गोविंद करें, ऐसा कुछ कहते हैं। तो अहंकार की रक्षा क्या करना है? अहंकार तो कहते हैं कि अहंकार ही तो है मूल सब हमारे फंसने। तो अहंकार की रक्षा करना मतलब तुम्हारा अहंकार ठीक ठीक रहे, हमारा जो अहंकार है वो ठीक रहे, शुद्ध अवस्था में रहे, शुद्ध अहंकार रहे। जीव सोचता रहता है, क्या सोचता है? कभी कभी हम मंदिर में आते हैं प्रवचन सुनते हैं, हाँ मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण की सेवा करना ये मेरा धर्म है। आज ही हमको हमारे साथ थे गुंडीचा मंदिर मार्जन में मधुर कृष्ण प्रभु, कहाँ गए? चले गए? बस वही बात जो बता रहे थे वही हुआ, मेरे को बता रहे थे प्रभु जी ऐसा लगता है कि बस यही करना जैसा है, लेकिन फिर ऐसा क्यों हो जाता है कि फिर हम घर चले गए? वो वही बता रहे थे और बात हुआ और अभी देखो चले गए, लेकिन वो बता रहे थे ऐसा कि प्रभु जी ऐसा लगता है कि बस भक्ति करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, क्या ये सब जाल है, ऐसा है वैसा, लेकिन फिर क्यों ऐसा होता है, मन फिर उसको करने लगता है, ऐसा ऐसा क्यों होता है? तो ये अहंकार जो है हमेशा स्थिर नहीं रहता है, ये बदलता रहता है। कभी कभी ऐसा अहंकार होता है कि नहीं हम कृष्ण के दास हैं, इस संसार में फंस गए हैं, वास्तव में कृष्ण सेवा करके ही हम खुश प्रसन्न हो सकते हैं, हमारा उद्धार हो, और हम कृष्ण के सेवक हैं, मैं कृष्ण का दास हूं, ये अहंकार होता है, ये भी अहंकार है, लेकिन ये शुद्ध अहंकार है। लेकिन फिर मंदिर से घर जाते हैं तो नहीं नहीं ये हमारा पत्नी है, ये हमारे बच्चे हमारे हैं, इनके लिए भी कुछ करना चाहिए, बच्चे का फीस भरना है, इनको अच्छी कॉलेज में एडमिट करना चाहिए, पत्नी है तो उसको अच्छा थोड़ा साड़ी, उसके लिए भी एक नेकलेस बनाना है, अभी ऐसा करना वैसा करना, वो घर जाके ये विचार आ जाता है ना। तो ये अहंकार मतलब उस गेंद की तरह, फुटबॉल की तरह, इधर लुटकता इधर लुटकता इधर, ऐसा अहंकार बदलता रहता है, ये स्थिर नहीं होता है अहंकार कि नहीं मैं कृष्ण का ही दास हूं बस और किसी का नहीं, मम एव वांसो बस उनका ही अंशों में मेरा संबंध उनके साथ है, बाकी ठीक है व्यवहार व्यवहार रखना संसार इससे ऐसा नहीं मैं बता रहा हूं कि बस सबको फेंक कर आ जाना, ये बात नहीं, संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है, परिवार में रहना बुरी बात नहीं है, पत्नी बच्चों के साथ रहना बुरा नहीं है, संसार में रहना बुरा नहीं है, लेकिन संसार को अंदर भर देना बुरा है, आसक्ति बुरा है, उसके प्रति आसक्ति बुरा है। एक भक्त ने तो एक बार बताया कि परिवार में प्रेम रखना बुरा नहीं है, संसार में प्रेम रखना बुरा नहीं है, उसमें आसक्ति रखना बुरा है, प्रेम अच्छा है आसक्ति बुरा है। और वो भक्त उदाहरण दे रहे थे कि जो धृतराष्ट्र था उसको दुर्योधन में आसक्ति था, दुर्योधन से प्रेम नहीं था, आसक्ति और प्रेम में डिफरेंस है थोड़ा, प्रेम होता है वो उसका हित चाहता है और आसक्ति होता है वो जैसा चाहता है वो उसकी पूर्ति करना चाहता है। आसक्ति में क्या है, बच्चा बीमार है लेकिन नहीं 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 गुल्फी मांग रहा है, गुल्फी मांग रहा है, सर्दी लगा तो नहीं दे दो, तो ये तुम्हारे बच्चे में आसक्ति है, प्रेम नहीं है। प्रेम है तो एक बार आप मना भी करेंगे, नहीं गुल्फी नहीं खाना, चुप रहे, ये प्रेम है, लेकिन मांगा दे दो है? बच्चा मंदिर जाना चाहता है तो नहीं मंदिर नहीं जाना बेटा, नहीं वो काम कर, वो आसक्ति है, प्रेम नहीं है आपको बच्चे से। मंदिर जाएगा, कुछ सत्संग सीखेगा, कुछ भजन करेगा तो इसका उद्धार होगा, ये प्रेम है। लेकिन नहीं मंदिर नहीं जाना बेटा, जा उधर जाओ ऐसा कर, वहां किसी क्लब में चला जा, तो कोई फिल्म में चला जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आसक्ति है और ये प्रेम है। तो धृतराष्ट्र को दुर्योधन में आसक्ति था, प्रेम नहीं था। तो परिवार में रहना चाहिए प्रेम के साथ, संसार में रहना चाहिए आसक्त नहीं होना चाहिए, कहने का अर्थ ये। तो हमारी जो अहंकार के बारे में बोला तो कलुषित होता रहता है। तो इस प्रकार और उसके बाद भी आगे, अब जो दूसरी बार चैतन्य महाप्रभु मंदिर का मार्जन कर रहे हैं तो उसमें विशेष शिक्षा है, हालांकि ये थोड़ा ऊंचा ऊंचे भक्तों के लिए है लेकिन फिर भी जानना चाहिए। दूसरी बार चैतन्य महाप्रभु ने कोने कोने से कंकर को, तिनका को, घास को, सबको उठाने के लिए उठाया और बिल्कुल साफ करने का, बिल्कुल चेतो, बिल्कुल चित्त को मांजन, कहीं कोने में कहीं बह और कोई अभिलाषा ना रह जाए, अन्य अभिलाषिता शून्य, अन्य अभिलाषिता से बिल्कुल, अन्य अभिलाषा अभिलाषा इच्छा से शून्य, अन्य अभिलाषी का उसमें बहुत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोटेशन देते हैं, लिखते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्य जो रूप गोस्वामी ये बताते हैं उसमें तो कि अन्य अभिलाषी आध्यात्मिक पथ में भी और इच्छा, सकाम कर्म की इच्छा या ब्रह्म ज्योति में विलय हो जाने की इच्छा, ज्ञान ध्यान योग ये इत्यादि जो दूसरे दूसरे प्रकार के जो ये आध्यात्मिक विषय कहे जाते हैं उसमें इच्छा करना यह भी एक प्रकार चित्त का मलिनता है। कृष्ण प्रेम या कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हो या कृष्ण सेवा के अलावा और अन्य अन्य पथ के द्वारा सुख होने की कामना करना या ऊंचे ऊंच पद को प्राप्त करने या ऊंचे लोकों को प्राप्त करने के लिए कोई सकाम कर्म करना या कठोर व्रत करना, कठोर तप करना है, कभी कभी देखा जाए और कठोर व्रत करते हैं जिसका कोई भक्ति में शास्त्रों में उल्लेख नहीं, ऐसा लोग कठोर व्रत करते हैं, हाँ नौ उपवास किया, इतना उपवास किया, एकादशी नहीं करते हैं और नौ उपवास निर्जला कठोर व्रत करते हैं, ये भी वास्तव में अन्य अभिलिषित ऐसे कठोर व्रत है, सकाम कर्म, सकाम कर्म का अर्थ है ऐसा कुछ यज्ञ है या ऐसा पुण्य है जिससे हमको ऊंचा लोक प्राप्त होगा, स्वर्ग लोक प्राप्त होगा, या इस जगत में ही कुछ सुख प्राप्त होगा, ऐसे कार्य करना, उससे ये इच्छा अंदर रहना, ये भी एक कंकड़ और तिनका के समान, ये भी नहीं रहना चाहिए हृदय में। कृष्ण प्रेम, प्रेमा पुमर्थो महान, बस चैतन्य महाप्रभु मत इदम, यही चैतन्य महाप्रभु का मत है कि कृष्ण के प्रेम को ही अनुकूल करना, कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति, इसी इच्छा के अलावा जो दूसरी दूसरी भी इच्छाएं हैं, हम लोग समझते हैं ये ध्यान करना ये भी भक्ति है, या ज्ञान या निर्विशेष का शून्यवादी, या ये सब भी भक्ति है, नहीं ये भक्ति नहीं है, ये भी इच्छा होना ये भी एक चित्त का मलिनता ही है। एक दूसरा कि जो हमारे हृदय में अन्य अन्य भक्ति में आने के बाद भी, जैसे चक्रवर्ती पाद लिखते हैं माधुर्य कादंबरी में, कि भक्ति में आने के बाद जो अनर्थ होते हैं वो अनर्थ क्या है, तो वो अनर्थ हैं पद, प्रतिष्ठा, पूजा, ये मतलब भक्ति में आने के बाद भी कोई पद की कामना रखना या प्रतिष्ठा रखना, प्रतिष्ठा मतलब हमारा भी यश हो, हम प्रसिद्ध हो जाएं, हम ऐसा कथा करें कि हम ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें कि हम ऐसे ऐसे चुटकले बताएं कि हमारा प्रसिद्धि हो जाए, हमारा नाम हो जाए फलाने राम बापू, ऐसा नाम होने के लिए ऐसा चेष्टा करना पद प्रतिष्ठा के लिए, या भक्ति में आने के बाद कुछ भक्ति में आने के बाद लोग उसको सम्मान देने लगते हैं, तो सम्मान पाने के लिए या कुछ चमत्कार दिखाने के लिए ऐसी चेष्टाएं करना, चमत्कार दिखा के लो मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारा ये हो जाएगा, और कभी उसका हो जाता है तो हाँ प्रभु जी के क्या बात करना, ये सब वास्तव में ये सब हृदय की मलिनता, ये दिखने में दिखता नहीं है ये बहुत, लेकिन ये हृदय के कोने में पड़ा हुआ वस्तु उस कंकर और तिनके के समान है। पद प्रतिष्ठा और प्रशंसा प्राप्त करना, अपनी प्रसिद्धि चाहना, ये सब हृदय के कोने में पड़े रहते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, बिल्कुल तिनका और कंकर और ये सब साफ करो। दूसरी बार शिक्षा, दूसरी बार उसका मार्जन कराया, और इस प्रकार सभी भक्तों ने फिर से उसको साफ किया, और साफ करने के बाद बिल्कुल जब स्वच्छ हो गया, बिल्कुल सफाई करना, इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु इसके इस लीला के पीछे ये हमको शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार से हमारे चित्त को, अगर हम कृष्ण को आमंत्रित करना चाहते हैं या उनको आकर्षित करना चाहते हैं, या हमारे हृदय में उनको शांति से प्रसन्न चित्त, उनकी प्रसन्नता चाहते हैं, तो हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करना चाहिए, इसका सफाई करना बहुत आवश्यक है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम भजन कर रहे हैं हो जाएगा, हो जाएगा, इसका साधन है, लेकिन भक्त को भी अपना प्रयास करना चाहिए, मीट नापना चाहिए कभी कभी चेष्टा, खुद चैतन्य स्वयं हमको भी इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना। हालांकि चित्रूपी दर्पण का मार्जन के लिए प्रमुख चैतन्य महाप्रभु ने उपाय बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने से आपका चित्रूपी दर्पण मार्जन हो जाए, परम विज्यते श्री कृष्ण संकीर्तनम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम। चैतन्य महाप्रभु ने ये उपाय बताया, साथ साथ श्रीमद् भागवतम भी उपाय बताती है, भागवतम में भी इसी बात को कहा गया है, श्रृणुताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्थो अभद्राणी विदुनोति सुहत सताम। हृदय में जो हमारे अभद्र हैं उसका निवारण करना है तो श्रृणुताम स्व कथा कृष्ण, कृष्ण का कथा श्रवण करना उनके शुद्ध भक्तों से, और साथ साथ में कथा श्रवण और कीर्तन करना, भगवान कृष्ण की कथा श्रवण से और भगवान कृष्ण का कीर्तन करने से हमारे हृदय में जो अभद्र हैं उससे हृदय का सफाई हो जाता है। ये श्लोक प्रभुपाद जी को बहुत पसंद था, विशेषकर प्रभुपाद जी जब अमेरिका में उतरे, जहाज से उतरकर बाहर आए और जब अमेरिका का स्थिति को देखा तो प्रभुपाद जी पहले तो घबरा गए, घबरा गए, अरे बाप रे ऐसे मलिन लोगों को कैसे कृष्ण भक्ति का उपदेश, इनको कैसे भक्त बनाया जाएगा है? ये तो बिल्कुल अभद्र से परिपूर्ण है, LMD ले रहे हैं, उनको कोई वस्त्र पहनने का ठिकाना नहीं, युवती युवक को किस प्रकार रहना चाहिए उसका कोई उनके पास आचरण नहीं, कुछ भी खाने का पीने का चलने का उठना बैठना कुछ भी उनमें आचरण नहीं था, बिल्कुल बड़ा बड़ा केस किया है, कपड़े भी स्नान करने का भी ठिकाना नहीं। जैसा आज सुबह सुन रहे थे माधवानंद प्रभु से है? एक भक्त जर्मन में गया तो उसको रहने के लिए एक कमरा दिया, तो उस भक्त ने पूछा कि बाथरूम कहाँ है, तो वो कमरे का मालिक बोले बाथरूम क्या होता है क्या खाली टॉयलेट है बाथरूम, तो बोला स्नान करने के लिए, तो बोला हफ्ते में एक दिन है वो एक सार्वजनिक, वहां हफ्ते में एक दिन करके आओ, बाकी तो सब स्प्रे छांट लेना वो करना, कुछ कुछ लोग तो दातुन भी नहीं करते उसमें भी स्प्रे छांट लेते हैं, ये विदेशों में ऐसा स्थिति है, बहुत गंदे रहते हैं। ये सफाई का जो अर्थ है जो मार्जन का करते हैं, ये बाहरी सफाई और अंतरिक्ष दोनों सफाई होना चाहिए। कभी कभी हम लोग हाँ मन भी चंगा कर, मन हृदय को भी साफ करना है, लेकिन साथ साथ बाहरी सफाई भी होना चाहिए है? इसको चक्रवर्ती पाद गीता में लगते प्रयत आत्मना अस्नामी प्रयत आत्मना, बाहरी शुद्धि भी होना चाहिए और अंतरक्ष शुद्धि भी होना चाहिए। अंतरक्ष शुद्धि भगवान के कीर्तन से, कथा श्रवण से और कथा भगवान के कीर्तन से होता है हृदय का शुद्धि, और बाहरी शुद्धि भी करना चाहिए स्नान इत्यादि से है, स्नान इत्यादि, इस्कॉन में तो स्नान बहुत फेमस है, तो बाहरी शुद्धि भी करना चाहिए, हमारे वस्त्र भी स्वच्छ होना चाहिए, भले फटे हैं कोई बात नहीं लेकिन धुले हुए होना चाहिए, और मल मूत्र त्याग करने के बाद भी स्नान करना है, हैं भगवान की सेवा में हम लगे रहते हैं तो इस बगैर बाहरी शुद्धि भी रखना चाहिए है? कुछ लोग कहते बाहरी स्नान के अंदर का शुद्धि नहीं, अंदर और बाहर दोनों शुद्धि बहुत जरूरी है, आवश्यक है शरीर में। यहां तक कहा गया विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो पत्र पुष्पम फलम तोयम ये श्लोक है, इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि भगवान अस्नामी प्रयत आत्मना के बारे में दोनों शुद्धियों का उल्लेख कर रहे हैं, शरीर का भी शुद्धि होना चाहिए और चित्त का भी शुद्धि होना चाहिए, ऐसे भक्तों से दिया गया मैं स्वीकार करता हूं। तो बाहरी शुद्धि में भी बताते हैं कि हमारी शारीरिक शुद्धि में स्नान इत्यादि करना, कभी कभी हम अशुद्ध अवस्था में होते हैं तो उस समय स्नान कर लेना, और उससे भी विशेषकर हम मीटिंग में चर्चा हुआ था कि चक्रवर्ती पाद ने लिखा है, जिसको पढ़ना है पढ़ सकते हैं, जो चक्रवर्ती पाद का भगवद गीता है, इस श्लोक के तात्पर्य में कि माताओं को मासिक धर्म में भी भगवान की सेवा नहीं करना चाहिए, भोग नहीं लगाना चाहिए चक्रवर्ती पाद, ये भी अस्नामी प्रेत आत्मा नमय आता है, है रजस्वला स्थिति में 3 दिन तक उसको भगवान के लिए भोग नहीं लगाना चाहिए, भगवान को वो भोग नहीं लगा सकते, ये बाहरी शुद्धि है। हम आजकल कुछ नहीं वहां ऐसा कहा है प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं है, नहीं कहा हमारे लिए नहीं कहा है, जब तक भारतीय स्त्रियां तो ये रखना चाहिए शुद्धि, ये भी शुद्धि में आता है, तो बाहरी शुद्धि भी होना चाहिए, शारीरिक शुद्धि भी होना चाहिए और हृदय की शुद्धि भी होना चाहिए, दोनों प्रकार से भक्त को शुद्ध रहना चाहिए। कभी कभी गीता में हम देखते हैं शमो दमो तपो सोचम, शमो दमो ये शुद्धि के लिए दो शब्द आए शम और दमा, दमा का अर्थ होता है बाहरी इंद्रियों का भी शुद्धि और शम का अर्थ आंतरिक इंद्रियों का भी शुद्धि, मन बुद्धि अहंकार का भी शुद्धि, चित्त का भी शुद्धि और बाहरी भी शुद्धि होना चाहिए, बाहरी इंद्रियां भी शुद्ध, बाहरी शरीर भी शुद्ध, वस्त्र भी शुद्ध स्वच्छ और साथ साथ में आंतरिक शुद्धि भी। आंतरिक शुद्धि का अर्थ है इंद्रियां जो है संसारिक भौतिक विषयों को भोगने की जो कामना है उससे भी धीरे धीरे हमको विमुख होना चाहिए। आंतरिक अशुद्धि क्या है जीव के लिए, अनर्थ, कई बताए काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर ये सब हैं, लेकिन ये जब संसारिक भौतिक विषयों को भोगने की जो कामना है ये सब इसके पूरक हैं, इसके आज हैं। कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, पूरी होती है तो लोभ होता है। तो वास्तव में मूल तो ये रजोगुण जो है कि संसारिक विषयों को भोगने की जो वासना है यही असत वासना है, है? माता देवती कहती है भगवान कपिल देव से, निर्वणा क्या श्लोक है, निर्वणाम नूतनम निर्वणाम भूमन असत इंद्रिय तोषणा। हे प्रभु, मैं इन असत इंद्रियों की असत तृष्णा को पूरी करते करते उब चुकी हूं। असत इंद्रियों की जो तृष्णा है, ये बहुत बड़ा विषय, इस पर बहुत कभी क्लास लेंगे कि ये असत इंद्रियां, असत इंद्रियां मतलब जो इंद्रियां कृष्ण विषयक सेवाओं से या कृष्ण विषयों से विमुख होकर संसारिक विषयों को ही भोगना चाहती हैं, उनको असत इंद्रियां कहा गई है। और वे ही इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लग जाए, आंखें बस भगवान का दर्शन करना चाहती हैं, हाथ जब भगवान की मंदिर को साफ करना चाहते हैं, तो ये सत इंद्रियां हो जाती हैं। असत इंद्रियां मतलब संसारिक भौतिक जो विषय हैं उनको भोगने की इंद्रियों की जो कामना है उसको असत इंद्रियां। और माता देवती कहती है कि इन असत इंद्रियों की जो तृष्णा है उसको पूरा करते करते मैं, मेरा दम निकल गया है, हम सबका दम निकल गया है, हम सब परेशान है। जगत बोलो क्यों परेशान है, असत इंद्रिय तोषणात्, ये जो हमारी इंद्रियां असत विषयों में जो इसको ग्रहण करके इनको भोगने की जो कामना है इससे आदमी परेशान हो गया है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता है। भूल इतनी है कि हम लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि नहीं नहीं वास्तव में इन इंद्रियों का डिमांड मैंने कितना पूरा कर दिया, लेकिन अभी तक ये तो है, हमने कितना रूप इसका संसार पसंद किया, हाँ ये लड़की पसंद है, शादी कर लिया उस पत्नी के साथ, और दो चार साल वो अच्छा है वो, तो भी मन उधर उधर चला जाता, वो स्त्री सुंदर है, वो लड़की अच्छा है, वो फैशन अच्छा है, चला जाता है हमारा मन। क्यों? क्योंकि असल ये इंद्रियां, तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए हमको, वास्तव में ये इंद्रियों की डिमांड है, ये हमको परेशान करके मेरा दम निकाल दिया है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हाँ थोड़ा और करके इसको संतुष्ट करो, थोड़ा और करके, होने वाली नहीं है, आपका दम निकल जाएगा, ये ऐसा ही डिमांड करती रहेगी। हैं प्रभु जी आ गए, मधुर कृष्ण प्रभु आपका ही जिक्र कर रहे थे हम, है जो हमारी इंद्रियां डिमांड कर रही हैं वो डिमांड को पूरा करते करते हमारा दम निकला है, अगर हम अभी सतर्क नहीं होते गए, अरे ये इनका डिमांड कभी पूरा होने वाला नहीं, चल इसको भगवान की सेवा में लगाओ, तो आपका दम निकल जाएगा, लेकिन आप अपने इंद्रियों की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन माता देवती ने उसको एक्सेप्ट किया, माता देवती ऐसी नहीं है, वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रही है, इन देवती माता तो परम अवस्था परम वैष्णवी है, महा महिला, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट करती है कि इस संसार में पड़े हुए जीव जो उनकी भौतिक विषयों इंद्रियों की डिमांड है। आप एक विषय पर, चलो भौतिक विषय की इंद्रियों एक विषय पर देखिए, मोबाइल निकला तो कितना मॉडल निकला, इतना मॉडल क्यों, आप मार्केट गए, ये अच्छा है, खरीदा लाया, फिर कंपनी ने दूसरा मॉडल निकाला वो अच्छा है, माताजी बाजार में गई बहुत अच्छा साड़ी है, खरीदा घर लाया पहना, और महीना दो महीने के बाद फिर मार्केट में, वो कितना अच्छा साड़ी है, ये क्या हुआ, क्या डिमांड है, ये फैशन आया ब्लाउज का, ये फैशन, ऐसा फैशन का ब्लाउज, हमने सुना कि ब्लाउज सीने का 150, 200, 300 रुपया, चक्कर आ गया हमको, हमको तो पता नहीं था, लेकिन हमारे बच्चियों ने एक दिन बताया कि अरे 150 रुपया एक ब्लाउज सीने का, क्यों, फैशन, क्या होने वाला है इससे, आप 300 रुपया दे के ब्लाउज सिलाकर पहन लो, अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन फिर जब वो दूसरा फैशन निकाले फेंको वो अच्छा है इसको ये तो मैं नॉर्मल बता रहा हूं, साधारण चीज बता रहा हूं, असत इंद्रिय तोषणात, ये हमारी जो आंखें, एक नाना प्रकार का फैशन, नाना प्रकार का डिजाइन, नाना प्रकार का रंग आप देते रहो, ये डिमांड करते रहेंगे, आप इसको कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। दम निकले निकले, मर जाओ, लेकिन वो तो मानता रहेगा। असत इंद्रिय तोषणात्, यही है हमारे चित्त का मलिनता और उसका पूरा जो, इसलिए चित्त का शुद्धि करना चाहिए, इंद्रियों को बाहरी बहुत विषयों में आसक्त नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, साधारण चीज चाहिए, और साथ साथ में जरूरत से ज्यादा प्रयास करना भौतिक उन्नति के लिए, यह भी एक प्रकार का कंकड़ है हृदय में पड़ा हुआ। सोचते हैं कि इतना है, एक और अगर हो जाएगा, एक और या 5 लाख का बैलेंस है, 10 हो जाएगा, फिर बस मेरे को फिर कुछ नहीं करना, फिर तो मैं मंगला आरती रोज आऊंगा, भजन करूंगा, होने वाला नहीं। इसको भी एक हृदय की मलिनता का, ये मतलब कोने में पड़ा हुआ, थोड़ा तो जितनी आवश्यकता है उतना परिश्रम करना चाहिए, लेकिन आधुनिक विकास, आधुनिक उन्नति, आज तो समाज कहां जा रहा है, उसने इतना किया है हमको थोड़ा नहीं, ये सब छोड़ो, उसने इतना किया, वो इतना क्रिया तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा, और आप भी करेंगे तो संतुष्ट होने वाले नहीं। क्यों? असत इंद्रिय तोषणार्थ, ये जो इंद्रियों की असत डिमांड है, इसको डिमांड को आप इंद्रियों को देकर कभी संतुष्ट इंद्रियां होने वाली नहीं है। तो ये सतर्कता रखना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, ये सब छोटे छोटे कंकड़ और तिनके हमारे हृदय में घुसे रहते हैं, अगर इनको भी हम निकाल कर नहीं फेंकेंगे तो ये हमारी दुर्दशा कर देंगे, फिर हम भक्ति ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार ये हमारे हृदय को चित्त का मार्जन करना चाहिए। इस लीला द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने पहले बाहर बाहर थोड़ा मंदिर सा झाड़ू से साफ किया, फिर तिनके कंकड़, ये छोटी छोटी जो कामनाएं हमारे कहीं हृदय में इधर उधर पड़ी रहती हैं, भक्ति में आने के बाद भी कुछ कामना थोड़ा, तो ये जो कामनाएं रहती है ये कंकड़ हैं, तो इनको भी हटा के फेंकना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, इसको हमें करना चाहिए, देखना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे साधन में बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, सतर्कता रखना बहुत आवश्यक है। जैसा प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि तेज धार का जो ब्लेड होता है उससे सेविंग अच्छा होता है, लेकिन सतर्क रहे, नहीं तो वो काट डालेगा आपको, काट सकता है। तो इस प्रकार ये चैतन्य महाप्रभु का बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है हम भक्तों के लिए और सभी जीवों के लिए, कि गुंडीचा मंदिर मार्जन मतलब हमारे हृदय का चेतु दर्पण मार्जन, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करना चाहिए, और जब चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो जाता है तो हमारा मन स्वच्छ, शीतल और शांत हो जाता है, जिससे हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये लीला द्वारा शिक्षा लेना चाहिए। पुनः हम जिन्होंने भी इस गुंडीचा मंदिर मार्जन में भाग लिया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सबको पता होगा 21 तारीख को रथ यात्रा है, और रथ यात्रा में सभी भक्तों को आमंत्रण करना है, और भी हमारे संबंधियों को, मित्रों को आमंत्रण करना है, और सबको जगन्नाथ जी की सेवा में लगाना है तन मन धन से। इस प्रकार भक्तों को प्रचार करके सभी को आमंत्रण करना चाहिए जगन्नाथ रथ यात्रा में। विशेषकर आज के जो अनाउंसमेंट हैं, द्वारकाधीश प्रभु, अच्छा कुंडल कृष्ण प्रभु करेंगे। हाँ तो फिर कृष्ण,
जय जय श्री राधे श्याम। तो धन्यवाद प्रभु जी को, बहुत सुंदर तरीके से शिक्षात्मक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की ये पवित्र लीला गुंडीचा मंदिर मार्जन के उपलक्ष में हरि कथा सुनाया। आइए उनको धन्यवाद देते हैं महामंत्र से। हरे कृष्णा तो सुंदर बता रहे थे कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, उससे शुद्ध होती है, नहीं तो ये असत इंद्रिया कभी तृषित संतोष नहीं होगा। करो हरे मंदिर मार्जनादिश, अम्बरीश महाराज अपने हाथों से, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से उस गुंडीचा जो है वो इंद्रधुम्न राजा की रानी का नाम है, और उसी के नाम पर ये मंदिर बना है जो पुरी में है, जिसका मार्जन यानी स्वच्छता महाप्रभु किए थे। एक सुंदर प्यार में सुनाना चाहूंगा भक्तों को, कविराज गोस्वामी ने लिखा है, चैतन्य महाप्रभु जब मंदिर साफ कर रहे थे तो कैसे दिख रहे थे? धूलिर धूसर तनो देखिते शोभान, कहां कहां अश्रु जले करे सम्मार्जन। चैतन्य महाप्रभु तप्त कंचन सोनार गौरांग वर्ण है, और ऊपर से जब सफाई कर रहे हैं तो सारी धूलों से उनका शरीर मंडित हो गया था, आवृत हो गया था, तो सोने का पर्वत जैसे धूल में धूल से ढका हो। तो धूलिर धूसर तनु देखित शोभान, करोड़ों करोड़ों कामदेव की छवि को भी लज्जित करने वाले ये गौरांग का श्री विग्रह, और कहां कहां अश्रु जले, मंदिर मार्जन करते हुए आंखों से दैन भयावश इतने अश्रु बहते थे, उनसे ही सफाई हो जाती थी। और जिसका किसका धूलि का गड्ढा सबसे बड़ा होगा वो देखेंगे, महाप्रभु कहते मैं देखना। और सबसे जब दिखाया गया तो सबसे ज्यादा बड़ा किसका था? चैतन्य महाप्रभु। मैं ये प्रसंग सुन रहा था तो एक एक सुंदर बात हम भक्तों के लिए, कोई कोई भक्त उसमें मेरे जैसे भी थे जो केवल बहाना करते थे, ऐसे करते नहीं थे थोड़े तो, तो महाप्रभु उनके पास जाते थे और कहते थे प्रभु जी आप तो कितना सुंदर कर रहे हो, दूसरे को भी सिखाइए ऐसा ही। थोड़े तो लज्जित हो जाता था क्योंकि डांटते नहीं थे, लेकिन ऐसे प्रेम से जब कोई स्वाभाविक वृत्ति होती है कुछ कुछ तो जो थोड़ा आलस या कम, तो उसको महाप्रभु प्रेम से प्रेरणा देते, ऐसे कोई मजाक कराना बात नहीं था, लेकिन पवित्र मन से। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे सिखाते, अरे आप तो अब जब कोई बढ़िया से नहीं करा और उसको कोई कहे आप तो वास्तव में फिर बढ़िया से करेगा, एकदम ये बात बाण होते हैं कुछ ऐसे जो बहुत काम करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में इसी अध्याय में सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा है, महाप्रभु बिना के न है दयामय, काके गरुड़ करे ऐसे कौन है। चैतन्य महाप्रभु के समान दया दयालु महावदान्य कोई नहीं है, वो चाहे तो कौवा को भी गरुड़ बना सकते हैं और बना दिया है, कौवा को भी गरुड़ बना सकते हैं चैतन्य। तो ऐसे श्री करुणा वरुणालय श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ये पावन पवित्र गुंडीचा मंदिर महोत्सव, उसमें सुनना कथा शिक्षा लेना और उसको जीवन में उतारना, आचार और प्रचार दोनों साथ में करता है वो गुरु है, हरिदास ठाकुर को सनातन गोस्वामी ने कहा है। और आचरण के बिना किया हुआ प्रचार वो केवल उपहास होता है ना, वो असर नहीं करता। तो ऐसी कई शिक्षा इन प्रसंग में है जो हमें सुनने मिली, इसका चिंतन करना चाहिए और अपने जीवन में उतारने का विनम्र प्रयास भक्तों की कृपा आशीर्वाद से करना चाहिए। आज के उत्सव का प्रसाद हमारे मंदिर से जुड़े काउंसलर इस ग्रेस कृष्णानंद प्रभु और इस ग्रेस गजेंद्रानंद प्रभु की काउंसलिंग की ओर से है आज के इस गुंडीचा मंदिर का मार्जन का महाप्रसाद अभिकार उपाद का, तो उसके लिए हम उसको आभार व्यक्त करते हैं सभी भक्त महामंत्र से, हरे कृष्णा हरे 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 राम। अगले रविवार प्रसाद बनाना एवं वितरण की सेवा इस ग्रेस गरुड़ध्वज प्रभु और इस ग्रेस घनसुंदर प्रभु के काउंसलिंग की ओर से रहेगी। विशेष अनाउंसमेंट है 19 तारीख मंगलवार को जो परसों है, श्री गदाधर पंडित का तिरोभाव तिथि है और श्री भक्ति विनोद ठाकुर का तिरोभाव तिथि है। 12 बजे तक दोपहर तक उपवास है मंगलवार को 16 तारीख को, और 20 तारीख बुधवार को नेत्रोत्सव दर्शन है जो शाम को 4 बजे होगा मंदिर में, जगन्नाथ जी के अनवसर वेला समाप्त होकर नेत्रों के लिए आनंद उत्सव जगन्नाथ जी के विग्रह के दर्शन की प्राप्ति होगी भक्तों को 20 तारीख को। और रथ यात्रा अभी प्रभु जी बताए कि 21 तारीख को है, सभी तन मन धन से उत्साह में लगे। जैसे प्रति वर्ष रथ यात्रा निमित्त में सभी दीक्षित वैष्णव जिन्होंने दीक्षा लिया है और जो दीक्षा लेना चाहते हैं वो कम से कम 1,000 रुपया की धनराशि गिरधारी रथ यात्रा महोत्सव में कम से कम देते हैं, ज्यादा भी देते हैं, लेकिन उसके लिए आप विष्णु कुमार प्रभु से मिलिए जो सामने बैठे हैं टेबल पर धन की सेवा के लिए, और कोई भी सेवा जो भी आप चाहते हो तो उनसे संपर्क करिए। वहां पर हमारे दयानिधि प्रभु विष्णु कुमार प्रभु सब आगे टेबल लेकर यहाँ पर बैठे हैं। और विशेष कि जो भोग बनाने के लिए जो माता जी लेकर गई है वो भी रथ यात्रा के दिन 10 बजे तक ला देना है, जो भी आप घर से ठाकुर जी के लिए जो भोग लाएंगे वो रथ यात्रा वाले दिन 21 तारीख को 10 बजे तक लाना है सबको, यहाँ मंदिर में टेबल रहेगा काउंटर वहां जमा कराना है। एक चाबी मिली है जो हमारे कृष्ण शिष्य प्रभु के पास है, जिनकी हो ले सकते हैं। तो बस इतना ही अनाउंसमेंट है, तो सभी के लिए महाप्रसाद है। अगले रविवार 24 तारीख को 11 बजे 11 से 12 परम पूज्य श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज, जो प्रभुपाद जी के परम शिष्य, जो श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से हजारों वैष्णवों को भक्ति का वर्धन कराते हैं, ऐसे महान आचार्य का जन्म उत्सव व्यास पूजा गुरु पूर्णिमा के दिन है हमारे राधा गिरधारी मंदिर में हॉल में। लेकिन उस उपलक्ष्य में कैसे व्यवस्था सेवा करना है, वीर कृष्ण प्रभु और सभी वैष्णवों के माध्यम से मीटिंग होगा। तो जो भक्त इस उत्सव में सेवा दे, विशेषकर राधा गोविंद महाराज के शिष्य, जो जरूर हाजिर रहे उस मीटिंग में 24 तारीख को अगले रविवार को 11 से 12 के बीच में। हाँ, भक्तिवेदांत हॉल में ही मीटिंग होगा ऊपर अगले रविवार। हाँ, कुछ लोग समझ रहे थे कांदीवली को, कांदीवली नहीं, यही है। अगले रविवार को व्यास पूजा के लिए मीटिंग हॉल में, मंदिर के पीछे जो हॉल है भक्तिवेदांत हॉल, उसमें 11 से 12 बजे है। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासु नैव जायते शरीर विद्या जान जड़ेन्द्रिय ताहे कान जीव फल विषय सागरे पर मध्य जीवाती लोभ माया सुदुर्मति पके जता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामान करिवारे जीवा जय सप्रसादन दिलो भान सयन्नामृत पावो शिशिराधा कृष्ण गुण गावो प्रेम डाको सि चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा गिरिधर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा निताय गौर सुंदर महाप्रसादम की श्रील प्रभुपाद की जय। गुंडिचा मार्जन महोत्सव की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ रथयात्रा महोत्सव की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। Thank you.